दिन भर 24 मार्च रविवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रेग्जिट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री टेरिजा मे के इस्तीफे की मांग पर ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी।
Changing Prime Minister wouldn't help us. Changing party in government wouldn't help us. We've got to address the question.
हिंदू लड़कियों के कथित अपहरण और धर्मांतरण के मामले में भारतीय विदेश मंत्री को पाकिस्तान की नसीहत। भारत में गंगा किनारे बसे शहरों में कितना दमदार है हिंदुत्व का एजेंडा।
एकदम पूरा बहुमत के साथ सब हिंदू एक हो जाइए, जितना भी हिंदू है जी धर्म के लोग सब एक हो जाइए, क्योंकि अभी जरूरत है।
सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हेमंड ने चेताया है कि प्रधानमंत्री टेरिजा मे को हटाए जाने से ब्रेग्जिट को लेकर बना गतिरोध नहीं टूटेगा। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने को लेकर ब्रितानी प्रधानमंत्री के समझौते के मसौदे को संसद ने दो बार खारिज कर दिया है। इसके बाद से उनके ऊपर अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से पद छोड़ने का भारी दबाव बना हुआ है। थाईलैंड में 5 साल पहले सेना के सत्ता में आने के बाद पहली बार हुए चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। अधिकतर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण देखने को मिला। माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहेगा। चुनाव से पहले राजा महा वजीर लोंगकोर्न ने मतदाताओं से अच्छे नेताओं को चुनने और बुरे लोगों को खारिज करने की अपील की थी। चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, माना यह जा रहा है कि सेना द्वारा तैयार किया गया संविधान सेना को ही देश में निर्णायक भूमिका में बनाए रखेगा। चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। सुनिए थाईलैंड से कुछ आम लोगों की आवाजें, मतदान के बाद उन्होंने क्या कहा।
आज के दौर में लोकतंत्र होना ही चाहिए। यहाँ हम अल्पसंख्यक आदिवासी हैं, हमारा ख्याल रखे जाने की जरूरत है, हमें आजादी चाहिए।
मैं
एक ऐसा नेता चाहता हूँ जिसे लोगों ने सही तरीके से चुना हो। थाईलैंड एक मजबूत देश है, जहाँ मैं एक ऐसा नेता चाहता हूँ जो इस देश के विकास के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए विचार लेकर आए।
ये थी थाईलैंड के कुछ आम लोगों की आवाजें। 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप पर मुलर की जांच के मुख्य बिंदु आज प्रकाशित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि रॉबर्ट मुलर को डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान और रूस के बीच किसी तरह की सांठगांठ के सबूत नहीं मिले हैं। कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के सदस्य शॉन स्टील ने पत्रकारों से कहा कि अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ट्रंप के लिए अच्छी खबर है।
It probably is the best thing that's helped Trump's re-election. I don't think a lot of people anticipated that. But when you have 100% vindication.
शायद ये ट्रंप को फिर से चुने जाने के लिए सबसे बढ़िया बात हुई है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को इसकी उम्मीद होगी, लेकिन जब कुछ था ही नहीं, कोई सांठगांठ ही नहीं हुई थी, तो इससे बहुत सारे लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे, मगर ट्रंप के लिए बड़ी अच्छी बात है और वो इसे इस्तेमाल करेंगे। ये थे कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के सदस्य शॉन स्टील के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मोजाम्बिक की सरकार का कहना है कि 10 दिन पहले आए चक्रवात के कारण अब तक दर्जनों लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। साइक्लोन ईडाई ने जिम्बाब्वे और मलावी में भारी तबाही मचाई है। पूरे इलाके में कम से कम 700 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के कारण मोजाम्बिक में समंदर जैसा मंजर बन गया है। राहत कर्मी जगह जगह फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समय बीतने के साथ बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मोजाम्बिक के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि इस चक्रवात के कारण लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जब तक पानी कम नहीं होता, मरने वालों की संख्या का सही पता नहीं लगाया जा सकता। इसराइल की सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी में हमास के नियंत्रण वाले 2 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिटेन से, जहां यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर यानी ब्रेग्जिट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री टेरिजा मे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। ब्रिटेन के अखबार दावा कर रहे हैं कि उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेता टेरिजा मे का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरिजा मे पर उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी इस बात का दबाव बना रही है कि या तो वो इस्तीफा दे दें या प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की तारीख बता दें, ताकि ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की उनकी योजना के लिए समर्थन हासिल किया जा सके। यानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे का इस्तीफा वो कीमत हो सकती है जिसे चुकाने के बाद यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के लिए किए गए समझौते पर ब्रिटेन की संसद मंजूरी की मोहर लगा सकती है। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे पर दो बार हार का स्वाद चख चुकी हैं। ब्रिटेन के अखबार ये दावा कर रहे हैं कि कैबिनेट के कुछ मंत्री प्रधानमंत्री टेरिजा मे को सत्ता से हटाने के लिए साजिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि टेरिजा की जगह एक कार्यवाहक नेता को लाया जाए जो तब तक रहे जब तक कि ब्रिटेन में चुनाव ना हो जाएं। दूसरी ओर ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हेमंड ने चेतावनी दी है कि टेरिजा की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने से ब्रेक्जिट पर जारी गतिरोध खत्म नहीं होगा। स्काई न्यूज से बातचीत में फिलिप हेमंड ने कहा है कि संसद को एकजुटता दिखाने की जरूरत है।
Changing Prime Minister wouldn't help us. Changing party in government wouldn't help us.
प्रधानमंत्री को बदलने से मदद नहीं मिलेगी, पार्टी और सरकार को बदलने से भी बात नहीं बनेगी। हमें ये तय करना है कि किस तरह का ब्रेक्जिट संसद को मंजूर है। समझौता नहीं होने पर ब्रिटेन को जो आर्थिक संकट झेलना होगा उसे किस तरह से टालना है, उसकी राह क्या होगी, संसद को ये भी देखना है। बड़ी चुनौती ये भी है कि हमें अपनी राजनीतिक प्रणाली में भरोसा भी बनाए रखना है।
ये थे ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हेमंड के शब्द। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को लंदन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला था। ये लोग यूरोपीय संघ से अलग होने के सवाल पर एक और जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे थे। इस मार्च के बारे में और जानकारी दे रही है लंदन से BBC संवाददाता किंजल पंड्या।
मैं फिलहाल लंदन के ट्रफेलगर स्क्वायर पर आई हूँ, जहाँ पर लाखों लोगों ने ब्रेक्जिट का विरोध करते हुए मार्च की है। इन लोगों का कहना है कि ब्रेक्जिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर फिर एक बार उनको वोट करने का मौका मिलना चाहिए। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है टेरिजा मे, इन्होंने जो डील बनाई है यूरोपियन यूनियन के हेड के साथ, जिसकी बुनियाद पर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलेगा, इस डील को दो बार यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिजेक्ट कर चुके हैं। आने वाले मंगलवार को ये फिर एक बार डील प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि उनके डील को यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं। साथ ही में देखना ये भी होगा कि जो लोगों ने ये मार्च की है, ये जो प्रोटेस्ट किया है, कि उनको फिर एक बार मौका मिलना चाहिए ब्रेक्जिट के ऊपर वोट करने का, इसे यहाँ की सरकार कितना सीरियसली लेती है। किंजल पंड्या वाघ, BBC लंदन।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में कथित रूप से अगवा की गई दो हिंदू लड़कियों के बारे में और कथित धर्मांतरण के बारे में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से एक रिपोर्ट मांगी है, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया है। BBCHindi.com की खबर सुनिए आदर्श राठौड़ की जुबानी।
पाकिस्तान में दो नाबालिग हिंदू लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के विरोध में हिंदू समुदाय ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया था। घटना सिंध प्रांत के घोटकी जिले के दहारकी तालुका में होली के दिन हुई। अनुसूचित जाति के हिंदू नेताओं ने आरोप लगाया है कि दो नाबालिग बहनों का होली के दिन कोहबर और मलिक जनजाति के लोगों ने अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दो लड़कियां इस्लाम अपनाने का दावा करते हुए कह रही हैं कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है। लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक हिंदू नेता शिवमुखी मेघवार ने कहा ये उनकी इच्छा नहीं थी और लड़कियों का अपहरण हुआ है और उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। इन खबरों पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया तो उन्हें पाकिस्तान से नसीहत देता जवाब मिला। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त से इस बारे में एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। इस पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लिखा, ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये मोदी का इंडिया नहीं है जहाँ अल्पसंख्यकों को तबाह किया जाता है। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जहां हमारे झंडे का सफेद रंग भी उतना ही कीमती है। उम्मीद करता हूं कि जब वहां अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की जाएगी तो आप भी उतनी ही तत्परता से कार्रवाई करेंगी। इस पूरे मसले पर भारत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय कार्चू ने भी ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में इस वारदात को शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा कि आपका नया पाकिस्तान कहां है। कार्चू को भी पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान को मोदी का भारत नहीं बनने देंगे जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात मजाक बन गई है। उन्होंने लिखा कि मानवाधिकार मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच करने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद हुसैन और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच ट्विटर पर जंग जारी रही। दोनों नेताओं ने अल्पसंख्यकों के मामले में एक दूसरे को विवेक इस्तेमाल करने की नसीहत दी।
bbchindi.com की रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौड़। भारत में लोकसभा चुनाव से पहले हर दिन सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव और राजनीति से जुड़ी आज क्या हलचल रही बता रहे हैं मेरे सहयोगी दिलनवाज पाशा।
जी संदीप, कल दिनभर चली हटकलों के बाद आज हरियाणा विधानसभा सपना चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो ना कांग्रेस में शामिल हो रही हैं और ना ही कांग्रेस के लिए कोई प्रचार करेंगी। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के जवाब में सपना चौधरी ने कहा,
नहीं मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं। चल देखिए, मेरी तस्वीरें पहले बहुत पहले खींची हुई है और वो आपकी तस्वीरें नहीं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगे। सबसे बड़ी बात जो है, जहां आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को इतने ही प्यार से आके बताऊंगी।
वहीं भाजपा से टिकट काटे जाने के बाद बिहार के पटना साहिब सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी पर अपना गुस्सा निकाला है और कहा है कि वो इसकी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काटे जाने पर भी अफसोस जाहिर किया।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं केपेबल हूँ, मैं एबल हूँ। मैं पहले भी कह चुका था कि मुझ पे अगर कोई एक्शन हुआ तो उसका न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो होगा, वैसे प्रतिक्रिया होगी और हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन आडवाणी जी के साथ जो हुआ वो बहुत दिल को चोट पहुंची और पूरे देश की जनता, मुझे लगता है कहीं इसका खामियाजा, अभी तक तो मैं जिस पार्टी में हूँ भारतीय जनता पार्टी, को उसका खामियाजा कहीं नहीं भुगतना पड़े।
जेएनयू के चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार ने बिहार की बेगूसराय सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें भी थीं लेकिन अंततः उन्हें टिकट नहीं दिया गया और अब महागठबंधन से यहां तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी उम्मीदवारी को मजबूत बताते हुए कन्हैया ने कहा,
इस तरीके का मन बिहार की जनता ने ऑलरेडी बना लिया है कि जो कंटेस्ट में होगा, जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा, तमाम लोग एकजुट होकर के उसको वोट देंगे। और बेगूसराय की आज की जो राजनीतिक हालत है, वो राजनीतिक हालत ये है कि तनवीर साहब लड़ाई में नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई जो है वो गिरिराज सिंह से है और हमको बेगूसराय की जनता पे भरोसा है कि बेगूसराय की जनता जीतेगी और नफरत और उन्माद हारेगा। यह बात हम समझते हैं, गिरिराज सिंह स्वयं बेगूसराय नहीं जाना चाहते हैं, उनके नखरे जो हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं। क्या बेगूसराय की जनता इस बात को नहीं देख रही है कि जो आदमी बेगूसराय को ही रिजेक्ट कर रहा है, आप हमको बताइए कि बेगूसराय की जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी।
वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। बिहार के किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और पूर्णिया से उदय सिंह को टिकट दिया गया है। जी संदीप,
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। भारत में लोकसभा चुनाव में हमेशा की तरह नजरें उत्तर भारत में गंगा नदी के इर्द गिर्द बसे उन चार राज्यों पर भी रहेगी जहाँ से 165 से ज़्यादा सांसद लोकसभा पहुँचते हैं। वैसे इन राज्यों में पिछले 5 साल में हिंदू राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है जिस पर बहस लगातार जारी है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक का सफ़र करके लोगों के मन की थाह लेने की कोशिश की और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की।
लोकसभा चुनाव 2014, नरेंद्र मोदी और विकास के तमाम दावे। हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मिली थी शानदार जीत। उस जीत के साथ ही बल मिला कुछ ऐसी दबी भावनाओं को भी जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कहीं दबी बैठी थी। फरवरी की एक बेहतरीन शाम और मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी के ठीक बगल वाले पुल से शाम की आरती देख रहा हूँ। बात उत्तर भारत की करें तो हिंदुत्व की आवाज़ें पिछले कुछ सालों में खासी बुलंद हुई हैं और जो उसकी बात ज़्यादा करते हैं उनको लगता है गंगा नदी, जिसकी पूजा लाखों हिंदू करते हैं, उसका एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस तरह की बातों से भारत के धर्म निरपेक्षता के दायरों पर भी सवाल उठे हैं। इनमें सबसे खतरनाक रही है हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों के नाम पर बढ़ी हिंसा।
गर्दन काट दे हिंदू, जय श्री राम।
गाय की तस्करी रोकने के नाम पर कुछ खुद ही सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गोहत्या के खिलाफ चली हिंसक मुहिम से पुलिस वाले तक अछूते नहीं रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं बुलंदशहर से थोड़ी ही दूर पर चिंगरावटी नाम के थाने के पास। मेरे सामने जो जली हुई पुलिस की जीप है उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का शव मिला था। दरअसल कुछ महीने पहले एक उग्र सी गुस्साई हुई भीड़ ने गोहत्या के विरोध में इनके थाने पर पथराव किया और उसके बाद भड़की हिंसा में सुबोध समेत दो लोग मारे गए। यहाँ से लेकर अलीगढ़ तक के गाँव वालों से हमने जो बातचीत की है तो ऐसा समझ में आता है और उनका कहना भी है कि इस तरह की वारदात पहले कभी नहीं हुई है और जाहिर है उसके बाद से हर तरफ भय का माहौल फैला हुआ है। ।2015 के दादरी हत्याकांड के बाद गाय से जुड़ी हिंसा के मामले बढ़े हैं। जहां 2014 में देश भर में ऐसे कुल 3 मामले हुए थे, वहीं 2016 में 30, 2017 में 43 और 2018 में गाय से जुड़ी हिंसा के कुल 31 मामले दर्ज हुए। इन तीनों सालों में इस हिंसा के चलते 35 लोगों की मौत भी हुई। इस सब के बीच गंगा, गाय और भारतीय संस्कृति को बचाने के नारे लगते रहे। हम कई ऐसे लोगों से भी मिले जिन्हें लगने लगा है कि हिंदू बहुसंख्यक होकर भी बुरी हालत में है। वाराणसी के 80 घाट के पास मुलाकात हुई गौरव प्रकाश से।
जितनी भी सरकारें रही पिछली, उनमें आपने देखा होगा हिंदुओं को हमेशा दबाने का कार्य किया गया। एक लक्षित हिंसा अधिनियम आने वाला था, अगर वो लागू हो जाता तो इस देश का हिंदू इस देश में रहते हुए भी एज ए शरणार्थी हो जाता।
40 साल पहले सुकून की तलाश में ब्रिटेन से बनारस आए एक शख्स ने भारत को अपना घर बना लिया था। शहर के बीचों बीच बना हुआ है दुर्गा कुंड, जिसके सामने वाली गली में क्रिस्टोफर बर्चेट अपनी भारतीय पत्नी और नाती पोतों के साथ रहते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई नफरत ने क्रिस्टोफर को भी ठेस पहुंचाई है।
ये सब सारी चीज़ें एक स्वास्थ्य समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं। भिन्न समाजों के बीच में घृणा पैदा करना या किसी एक के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत स्वच्छ सोच नहीं है। जो सदियों से लोग शांतिपूर्वक अपने दिनचर्या करते चले आ रहे हैं उसमें काफी बाधा आते हैं।
इस बीच उत्तर भारत में कई जगह गोहत्या पर नए कानून बनाए गए हैं, नए टैक्स भी लगाए गए हैं। प्रयागराज के कुंभ पहुंचने पर राम मंदिर या मस्जिद का मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ता दिखा, लेकिन कुछ अनसुने पहलू मजबूत दिखे। मिसाल के तौर पर हमारी मुलाकात गंगा के किनारे एक मुस्लिम गोरक्षक मोहम्मद फैज खान से भी हुई। फैज भाई, ये बताएं, आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उस मुस्लिम समुदाय में क्या एक डर की भावना आपको नहीं दिखी है पिछले 3-4 सालों में, जब से गो हत्या रोकने के नाम पर हिंसा सड़कों पर हुई है?
गाय डिबेट का विषय है ही नहीं, अज्ञानतावश ये सारी डिबेट हो रही है। यदि आप वेद को खोलकर पढ़ें तो वेद में गाय को हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई की माँ नहीं कहा गया। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आज हर जिस्म और हर खेत की आवश्यकता है।
गंगा नदी के किनारे किनारे हिंदुत्व के रूप की तलाश हमें इलाहाबाद कानपुर के बीच एक गौशाला तक ले गई, जिस गौशाला के बीच में खड़ा हूं उसमें इस वक्त करीब 300 गाय तो आराम से होंगी। बड़े बड़े गेट हैं और इन्हें यहाँ छोटे छोटे टेम्पो वगैरह कुछ घंटों के बाद लाते हैं, कुछ ले भी जाते हैं। 5 से 6 लोग हैं जो यहाँ पर इन गायों की तीमारदारी के लिए हैं। उत्तर भारत में बहरहाल गौशालाओं को बनाने का फैशन सा चल पड़ा है। दिल्ली हो, हरिद्वार, चाहे कानपुर हो या बनारस, इस तरह की सैकड़ों गौशालाओं में एकाएक गायों को लाकर रखा जाता है, लेकिन इनके भीतर के हालात बेहद ख़राब हैं। मैं खुद देख सकता हूँ यहाँ गंदगी फैली हुई है। इस छोटे से कैंपस में शायद 100 से ज़्यादा गायों के रखने की जगह थी, लेकिन यहाँ अब 300 तो है ही है। बात माहौल की हो तो पिछले कुछ वर्षों में शहरों और सड़कों के नाम बदलने पर भी छिड़ी रही है बहस। मुगलसराय के बाद फैजाबाद और इलाहाबाद इतिहास के पन्नों में चले गए, उन्हें मिले नए नाम। मकसद के बारे में कुछ लोग चुप रहे और कुछ ने खुलकर बात की। पहले इलाहाबाद और अब प्रयागराज में हमारी मुलाकात एक लोक संगीत गायिका मंजू नारायण से हुई।
पीछे पड़ा अरे खुद के बतावे ला मजनू का मौसा पीछे पड़ा हाय पीछे पड़ा मुझे।
सबसे बड़ी बात है उस शहर की विशेषताएं चेंज नहीं होनी चाहिए बल्कि और विकसित होनी चाहिए। जैसे मैं अपना नाम ही बदल लूं, कुछ भी मैं रख लूं एक्स वाई जेड, तो वो नाम से बदलने से कुछ नहीं होगा। तो नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता है, तो बदलना है तो उसकी अच्छाइयाँ, उसको इस तरीके का बदलाव होना चाहिए।
अरे रोवते रोवते सांझ बिहनवा कजरा बही बही जाला नयनवा।
गाजीपुर हो या बलिया, गंगा नदी के इस विशाल क्षेत्र में ही बल मिला है कुछ ऐसे संगठनों को भी जो डंके की चोट पर वो सब कर रहे हैं जो पहले चोरी छिपे होता था। मिसाल के तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासी सक्रिय रही हिंदू युवा वाहिनी और ब्रिजकेतु सिंह गाजीपुर में इसके उपाध्यक्ष हैं।
सनातन धर्म को जो है विपक्ष जो पार्टियां हैं या जो है मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है, सभी लोग जो है बांटने का काम करते हैं। धर्म परिवर्तन, हमारे जो है बहन बेटियों को भगाना, हम लोग जो है उनके अपने माध्यम से उनको बुला के घर वापसी कराते हैं।
लेकिन गाजीपुर बलिया बॉर्डर के एक छोटे से कस्बे मोहम्मदाबाद में डॉक्टर फतेह मोहम्मद से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने इमरजेंसी का भी दौर देखा है।
अब जैसे राम जन्मभूमि है, भाजपा इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही है, राम की बेटी से कोई लेना देना नहीं है, राम की बेटी दहेज के लिए जला दी जाती है, और उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इनको बाबरी मस्जिद चाहिए, लेकिन बाबर की लाखों बेटियां कोठों पर तन बेच रही हैं रोटी के लिए। कैसे रुकेगा ये कोठे पर जाना, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद की बहुत चिंता है।
हिंदू धर्म की राजनीति यानी हिंदुत्व को त्योहारों और धार्मिक जलसों के जरिए भी मजबूत और आक्रामक बनाने की कोशिशें दिखी। गंगा के तट पर बसे पटना से ज्यादा दूर नहीं है बिहार शरीफ। पिछले साल एक धार्मिक जुलूस ने यहां दंगों का रूप ले लिया, दर्जन भर लोग जेल गए और नतीजा ये कि आज हिंदू मुस्लिम दोनों के चेहरों पर शक साफ दिखता है।
लेकिन इस बार
इसी बीच मुलाकात बजरंग दल से जुड़े एक युवक से भी हुई जो इसी इलाके के एक छोटे से मोहल्ले में एक चबूतरे पर बैठे कुछ लोगों को एकजुट कर रहे थे।
एकदम पूरा बहुमत के साथ सब हिंदू एक हो जाइए, जितना भी हिंदू है जिस धर्म के लोग सब एक हो जाइए, क्योंकि अभी जरूरत है।
तो बिहार जैसे राज्यों में भी इसकी गूंज सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में तब्दील हुई। औरंगाबाद के एक एम्बुलेंस ड्राइवर की गलती बस इतनी भर थी कि रामनवमी जुलूस के बाद भड़के दंगों के बीच फंस गए।
न्यू काशी नगर यही है, न्यू काशी मोहल्ला यही है,
पुरानी काशी मोहल्ला।
5 लोगों का परिवार चलाने वाले मोहम्मद नईम अब अपाहिज हो चुके हैं।
तो हम गया से पेशेंट छोड़ करके आके हम हॉस्पिटल में लगा दिए थे, गाड़ी लगा के हम बोले कि चले खाना उना खा लेते हैं। उस हमारे ही रोड में, नवडी रोड में हल्ला हंगामा पथराव हो रहा था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। अचानक जो गोली चला सर, हम अपने मोहल्ला के मतलब रोड में आ ही चले थे, थोड़ा सा अगर 2 मिनट भी टाइम मिलता तो हम अपना गली में एकदम घुस जाते, लेकिन उतना भी टाइम नहीं लगा। गोली चलाया तो साइड से लगा, इधर लगा, वहीं पर हम गिर गए सर।
अगला पड़ाव औरंगाबाद से 10 घंटे की दूरी पर बसा भागलपुर था। ये शहर 1989 के दंगों से आगे बढ़ चुका था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन ये सब पिछले साल तक। यहाँ भी एक धार्मिक जुलूस से भीड़भाड़ बढ़ी, भड़काऊ नारेबाजी बढ़ी और अब इलाके में तनाव लौट चुका है। पिछले चुनावों में मुद्दे विकास या सुशासन के थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय बनाम बाहरी पर भी हाय तौबा मची हुई है। एक जमाने में कम्युनिस्टों के गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़े हैं। बांग्लादेश से सटे मालदा में 2 साल पहले एक धार्मिक जुलूस के बाद बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में जमकर पत्थरबाजी हुई। देखे, देखे, देखे। 20 साल के तन्मोय तिवारी को इसी बीच पैर में गोली लगी, लेकिन उन्हें मलाल नहीं है।
हम तो पहले से नहीं जानते थे कि वो गोली हमारे ही पैर में लगेगा। हम जो फट समझे कि हम हिंदू है, हमारा सामने कोई अगर मंदिर तोड़ देगा तो हम काहे का हिंदू है, मंदिर नहीं बचा सकते। तो मंदिर बचाते हुए हमारा जान चले जाता तो हम नहीं सोचते।
पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा में मौजूद हैं। नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक करीब 50 लोग यहां पिछले 1.5 घंटे से व्यायाम कर रहे हैं और देशभक्ति के नारे भी लग रहे हैं। हाल ही में हुए पुलवामा हमले का भी जिक्र हो रहा है और लोगों को किसी दूसरे हमले के लिए सजग रहने की हिदायत भी दी जा रही है। ये आरएसएस की शाखा है और इस पूरे इलाके में 2000 से ज्यादा ऐसी शाखाएं रोज लगती हैं। यहाँ पर आने वालों के मुताबिक इनमें लोगों का आना जाना बढ़ रहा है और अगर आप पूरे उत्तर भारत को इंक्लूड करें तो ऐसी कम से कम 10,000 से ज्यादा शाखाएं रोज चलती हैं। ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि हाल फिलहाल में जो हिंदू राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई है, वो अपना सपोर्ट और अपनी ताकत इस तरह के तमाम कैंपों से भी लेती है। चुनाव नजदीक है और मुद्दे कई हैं। उत्तराखंड से यूपी और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल तक राजनीति में धर्म की मिलावट जरूर दिखी, लेकिन हिंदुत्व की बढ़ती ललकार से कितना नफा नुकसान हुआ, इसको उन्हें तौलना है जो अपने वोट डालेंगे। नितिन श्रीवास्तव, BBC, पश्चिम बंगाल।
और यहाँ दिल्ली स्टूडियो में आदेश कुमार गुप्त हाजिर हैं। इस समय IPL के मैदान में क्या हालचाल है आदेश जी?
जी संदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले अपने ही मैदान यानी ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत की बाजी मारी है। सनराइजर्स हैदराबाद को उसने 6 विकेट से पराजित किया। जीत के लिए उसके सामने 182 रनों का लक्ष्य था और ठीक 2 गेंद पहले उन्होंने आंद्रे रसिल के 49 और शुभमन गिल के 18 रनों की मदद से ये हैरतअंगेज जीत हासिल की। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पहले यानी कि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर के 85, जॉनी बेयरस्टो के 39 और विजय शंकर के 40 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 181 रन बनाए। और एक समय तो कोलकाता की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आंद्रे रसिल ने केवल 19 गेंदों पर 49 रन बनाए नाबाद रहते हुए, जिसमें उनके 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 18 रन बनाकर नाबाद रहे और इस दौरान उन्होंने 2 छक्के लगाए। तो इस तरह से जीत के साथ आगाज किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उधर मलेशिया के इपोह शहर में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह का पॉकेट टूर्नामेंट में आज भारत और दक्षिण कोरिया 1-1 से बराबरी पर रहे। हालांकि मैच का गोल भारत के मनदीप ने खेल के 28वें मिनट किया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने खेल के ठीक आखिरी मिनट में यानी 60वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर को 1-1 से बराबरी पर ला दिया।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, सुना रहे थे खेल की खबरें। वक्त नहीं बचा है मुख्य समाचार सुनाने का, दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समय अनुसार, समय जानते हैं आप, हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति, शुभ रात्रि।